नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को साल 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार बताया। भारतीय सेना ने हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए नसीराबाद छावनी में विशेष फोर्स भैरव तैयार की। जयपुर में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नामी आईटी व्यवसायियों से मुलाकात की और प्रदेश में अगले सप्ताह भी अधिकतर स्थानों पर घने कोहरे, शीतलहर और तेज सर्दी का दौर जारी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि साल 2014 से देश में खेलों का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ है। उनकी सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का खेल मॉडल खिलाड़ियों के अनुकूल है और इसलिए पिछले वर्षों में खेलों में हम सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं की पहचान, उनके उचित प्रशिक्षण, पोषक आहार और पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर ध्यान दे रही है।
आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 11 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश भर के 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि वर्ष 2025 में भारत का चावल उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक रहा है। श्री चौहान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से विकसित बेहतर गुणवत्ता वाली 25 फसलों की 184 नई किस्मों के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने चावल उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 10 वर्ष में बीजों की 3200 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं। वहीं नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि विशाल बजट के बावजूद मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बना। वहीं इस योजना में गांवों के दीर्घकालिक विकास और स्थायी संपत्ति सृजन को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वीबीजी रामजी नए कानून से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वे गांवों के विकास में सार्थक योगदान भी दे सकेंगे।
बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा, मजदूरों को काम मिले ये प्राथमिकता। लेकिन इसके साथ साथ इस विशाल धनराशि से गांव में विकास के काम हो, विकसित भारत के लिए विकसित गांव, और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई। इसी साल जो प्रस्तावित है, जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 151,282 करोड़ रुपया।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने आज कोटपूतली बहरोड जिले के रिवाली गांव में शहीद नीतीश कुमार की प्रतिमा का अनावरण किया। लायंस नीतीश कुमार जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हो गए थे। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि सैनिक हमें अनुशासन और कर्तव्य पालन की सीख देते हैं। देश ऐसे वीर शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा और उन्हें बार बार नमन करता रहेगा।
सेना की वर्दी पहने हुए जो शहीद की मूर्ति है, वो हमें दो चीजों की प्रेरणा देती है, पहली अनुशासन की और दूसरी कर्तव्य पालन की। सेना में जाने के बाद लोग अपने जीवन का उत्कृष्ट बलिदान करते हैं, लेकिन इस बलिदान को करने के पीछे जो मकसद है, वो मकसद अपने देश की रक्षा करना है। और इसलिए कोई भी मकसद को अगर आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो दो चीजें जरूर होनी चाहिए, आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए और कर्तव्य परायण की आपके अंदर उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए।
भारतीय सेना ने नसीराबाद छावनी में भैरव नाम से एक स्पेशल फोर्स तैयार की है। देश की सुरक्षा को मजबूती देने और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए ये विशेष फोर्स बनाई गई है। भैरव कमांडोज को हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित किया गया है। भैरव फोर्स पर और ब्यौरा दे रही हैं हमारी अजमेर संवाददाता।
भैरव बटालियन इंडियन आर्मी फोर्स की फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। इस फोर्स के साथ ही 1,00,000 से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स भी तैयार किए गए हैं। फोर्स के अधिकारियों के अनुसार आधुनिक युग में युक्ति का तरीका तेजी से बदल रहा है। आज के दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त आवश्यकता को देखते हुए ये फोर्स तैयार की गई है। भैरव बटालियन आने वाले समय में सेना के लिए तीव्र सक्षम और निर्णायक फोर्स साबित होगी। नलमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
निर्वाचन आयोग ने ईसीआई नेट ऐप में सुधार के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस ऐप पर 10 जनवरी तक सुझाव दिए जा सकते हैं। आयोग ने मतदाताओं को बेहतर सेवाएं और चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए ये डिजिटल मंच तैयार किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसके लिए निवेशकों को हर संभव सहायता और सुविधा के लिए आश्वस्त किया है। श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 में आमंत्रित देश के प्रतिष्ठित आईटी एंटरप्रेन्योर्स से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को आईटी हब बनाने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी और डेटा पॉलिसी लाई गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निवेशकों के साथ लगातार संपर्क रखने और उनके सुझावों और जरूरतों पर तत्परता से काम करने के निर्देश दिए। डिजिफेस्ट के उद्घाटन सत्र में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों से परिचित करवाने के साथ ही स्टार्टअप और युवाओं को मेंटोरिंग का अवसर दे रहा है।
राजस्थान सरकार इसके अंदर आपके साथ खड़े होने को तैयार है। हमारे चाहे वो इंडस्ट्री का विभाग हो या फिर आईटी का हो या हमारे मल्टीपल सरकार के अलग अलग विभाग हो, हम सब कन्वर्ज करके एज अ होल ऑफ द गवर्नमेंट आपको समर्थन करने को तैयार है, आपके साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार है, ताकि आप एक भविष्य ऐसा बनाएं जिसके अंदर राजस्थान और भारत आगे बढ़े। टेक्नोलॉजी हैज टू बी ह्यूमन सेंट्रिक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसा हो जिससे जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है उसको सशक्त करा जाए।
गौरतलब है कि जयपुर के JECC में 3 दिन का राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी, 500 से ज्यादा निवेशक और करीब 300 प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और हादसों में घायल व्यक्ति की सहायता करने की अपील की है। उन्होंने युवाओं से खतरनाक और लापरवाह ड्राइविंग से दूर रहने, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी महीने में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है। सीख से सुरक्षा, तकनीक से परिवर्तन थीम पर हो रहे इस अभियान के जरिए सरकार संवेदन शीलता के साथ सड़क सुरक्षा को महत्व दे रही है। इसके लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजिंग सिस्टम, ई चालान, ऑटोमेशन सहित कई नवाचार किए गए हैं। इसके साथ ही राहवीर योजना के जरिए त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाकर हर घायल के जीवन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बूंदी जिले के लाखेरी क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और आठ व्यक्ति घायल हो गए। दुर्घटना कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर हुई, जहां एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस दौरान चौथ का बरवाड़ा की ओर जा रहे पैदल यात्री ट्रक के नीचे दब गए। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि गंभीर घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी एमबीएस अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में अगले सप्ताह भी अनेक स्थान पर घने कोहरे, शीतलहर और तेज सर्दी का असर बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार अगले दो तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। उत्तरी जिलों में शीतलहर का प्रभाव बना रहेगा, जबकि कुछ शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री कम रहने से कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। नए साल में हुई मावठ से तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच आज अलवर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जयपुर सहित कई जगह घना कोहरा छाया रहा। वहीं सिरोही, सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर में भी शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रहा। लूणकरणसर और माउंट टाबू में रात का पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पाली, चूरू, झुंझुनू, वनस्थली में न्यूनतम तापमान औसतन 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। भीलवाड़ा, जोधपुर और डूंगरपुर के अलावा लगभग सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव के मौके पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम हुए। भरतपुर में शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं गुरुद्वारों में रागी जत्थों की ओर से शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को साल 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार बताया। भारतीय सेना ने हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए नसीराबाद छावनी में विशेष फोर्स भैरव तैयार की। जयपुर में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 शुरू। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नामी आईटी व्यवसायियों से मुलाकात की। और प्रदेश में अगले सप्ताह भी अधिकतर स्थानों पर घने कोहरे, शीतलहर और तेज सर्दी का दौर जारी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।